लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह स्वतः को सुसमाचार के प्रकाश में नवीकृत करने की कृपा और शक्ति प्राप्त कर सके। आमेन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं फादर संजय दिलीप एक्का। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 29 अगस्त को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
वांजेलो देला लिटुर्जिया दी ओजी मोस्ट्रा अल्कुनी स्क्रिबी ए फरीसेई स्टुपिटी दल्लाटेजामेंटो दी येशू।
आज की धर्म विधि का सुसमाचार पाठ कुछ सदुकियों एवं फरीसियों को प्रस्तुत करता है, जो यीशु के मनोभाव से आश्चर्यचकित होते हैं। वे ठोकर खाते हैं क्योंकि उनके शिष्य शुद्धिकरण की रीति की परंपरा को पूरा किए बिना भोजन करते हैं। वे आपस में सोचते हैं कि इस तरीके से करना धार्मिक अभ्यास के विपरीत है। संत पापा ने कहा, हम भी अपने आप से पूछ सकते हैं, क्यों यीशु और उनके शिष्य इन परंपराओं का पालन नहीं करते हैं? आखिरकार ये चीजें बुरी नहीं हैं, बल्कि अच्छे धार्मिक संस्कार हैं। साधारण तौर पर भोजन करने से पहले हाथ धो लेना चाहिए, क्यों यीशु ऐसा नहीं करते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण है विश्वास को उसके केंद्र में लाना। सुसमाचार में हम लगातार देखते हैं विश्वास को केंद्र में लाया जाता और उस खतरे से बचाया जाता है जो सदुकियों के लिए और हमारे लिए भी लागू होता है। बाह्य औपचारिकताओं को पूरा करना एवं हृदय तथा विश्वास को पीछे रखना। कई बार हम आत्मा का मेकअप करते हैं, बाहरी औपचारिकता पूरी करते और विश्वास को केंद्र में नहीं रखते हैं। यह एक खतरा है, यह दिखावे की धार्मिकता का खतरा है। बाहर से अच्छा दिखाई देना जबकि हृदय को शुद्ध करने में असमर्थ होना। बाहरी भक्ति में हमेशा ईश्वर को व्यवस्थित करने का प्रलोभन होता है, किंतु यीशु इस भक्ति के लिए तैयार नहीं है। यीशु बाहरी दिखावा पसंद नहीं करते, वे ऐसा विश्वास चाहते हैं जो हृदय का स्पर्श करता है। उसके तुरंत बाद वे लोगों को एक बड़ी सच्चाई के बारे बतलाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। संत पापा ने कहा कि ये शब्द क्रांतिकारी हैं, क्योंकि उस समय की मानसिकता के अनुसार ऐसा माना जाता था कि कुछ भोजन या बाह्य संपर्क की व्यक्ति को अशुद्ध बना देते हैं। यीशु इस दृष्टिकोण को बदलते हैं। जो बाहर से आता है वह व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि जो अंदर से आता है वही हानि पहुंचाता है। तब संत पापा ने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह हमारे लिए भी है। हम बहुधा सोचते हैं कि बुराई बाहर से आती है, समाज के उन लोगों से जिनसे हम संपर्क करते हैं, जो हमारी बुराई चाहते हैं। कितनी बार हम हमारे साथ जो कुछ होता है उसके लिए दूसरों को, समाज को और विश्व को दोष देते हैं कि यह दूसरों की, अधिकारियों की अथवा दुर्भाग्य की गलती है। हम दोष देने में समय बिताते हैं, किंतु दूसरों को दोष देने में समय बिताना समय बर्बाद करना है। हम क्रोधी बनते, कड़वे हो जाते हैं एवं ईश्वर को हमेशा हृदय से दूर रखते हैं। सुसमाचार के उन लोगों के समान जो शिकायत करते, जो ठोकर खाते, विवाद उत्पन्न करते और यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं। शिकायत करने वाला व्यक्ति सच्चा संस्कारी नहीं हो सकता। गुस्सा करने, बदले की भावना रखने और उदास रहने वाला व्यक्ति ईश्वर के लिए अपना द्वार बंद कर लेता है। संत पापा ने कहा, आज हम प्रभु से निवेदन करें कि वे हमें दूसरों को दोष देने से मुक्त करें। हम प्रभु से कृपा की याचना करें कि हम शिकायतों द्वारा दुनिया को दूषित करने में समय नष्ट न करें, क्योंकि यह ख्रिस्त स्वभाव नहीं है। इसके विपरीत यीशु हमें जीवन और दुनिया को देखने एवं हृदय से शुरू करने का निमंत्रण देते हैं। यदि हम अपने अंदर झांकेंगे तो करीब उन सभी चीजों को पाएंगे जिनसे हम बाहर घृणा करते हैं, और यदि हम ईमानदारी से ईश्वर से हृदय को शुद्ध करने की याचना करेंगे तो हम दुनिया को शुद्ध करना शुरू करेंगे, क्योंकि यह बुराई को जीतने का एक अचूक रास्ता है कि हम अपने अंदर में इससे जीतना शुरू करें। कलीसिया के पहले धर्माचार्यों और मठवासियों से जब पूछा जाता था कि पवित्रता का मार्ग क्या है, मुझे किस तरह शुरू करना है, तो वे बतलाते थे कि पहला चरण है अपने आप को दोषी समझना। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। संत पापा ने प्रश्न किया, हम दिन में कितनी बार, दिन भर में कम से कम एक बार या सप्ताह में एक क्षण अपने को दोषी स्वीकार कर पाते हैं? उन्होंने कहा कि अपने आप को दोषी स्वीकार कर पाना प्रज्ञा है। उन्होंने सभी विश्वासियों को ऐसा करने का प्रोत्साहन दिया। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, कुंवारी मरियम, जिसने अपने हृदय की शुद्धता से इतिहास को बदल दिया, हमें अपने हृदय को शुद्ध करने में मदद दे। सबसे पहले और सबसे बढ़कर दूसरों को दोष देने एवं सब कुछ में शिकायत करने की प्रवृत्ति पर काबू पाते हुए। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini nunciavit Maria
et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Sancta Maria.
संत पापा फ्रांसिस ने देवदूत प्रार्थना के उपरांत विश्वासियों से अपील की कि वे अफगानिस्तान के लोगों के प्रति एकात्मकता दिखाएं, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के प्रति जो हाल के दिनों में हिंसक हमलों के शिकार हुए हैं। अफगानिस्तान की स्थिति पर गौर करते हुए उन्होंने कहा, मैं बड़ी चिंता के साथ अफगानिस्तान की स्थिति पर ध्यान दे रहा हूं तथा उन सभी लोगों के दुख में सहभागी होता हूं जो पिछले बृहस्पतिवार के आत्मघाती बम हमले में मौत के शिकार लोगों के लिए शोक मना रहे हैं और जो मदद एवं सुरक्षा की खोज कर रहे हैं। मैं मृतकों को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया को सौंप देता हूं तथा उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो बहुत अधिक परेशान लोगों की मदद हेतु काम कर रहे हैं, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और प्रार्थना करें ताकि वार्ता एवं एकात्मकता द्वारा शांति और भाईचारापूर्ण सहअस्तित्व स्थापित हो सके तथा देश के भविष्य को आशा प्रदान किया जा सके। इस तरह के ऐतिहासिक क्षण में हम उदासीन बनकर नहीं रह सकते। उनके लिए संत पापा ने प्रार्थना और उपवास करने की सलाह देते हुए कहा, यही कारण है कि मैं आप सभी से अपील करता हूं कि प्रार्थना एवं उपवास को तेज करें या इसे करने का समय है। मैं इसे गंभीरता से बोल रहा हूं। प्रार्थना और उपवास को तेज करें, ईश्वर से दया एवं क्षमा की याचना करें। तत्पश्चात संत पापा ने वेनेजुएला के मेरिदा के लोगों की याद की जो इन दिनों बाढ़ एवं भूस्खलन से पीड़ित हैं। उन्होंने इसके कारण मौत के शिकार लोगों एवं उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना की। तत्पश्चात लाउदातो सी आंदोलन के सदस्यों का अभिवादन करते हुए संत पापा ने कहा, हमारे आम घर के प्रति आपके समर्पण के लिए धन्यवाद, खासकर सृष्टि के लिए विश्व प्रार्थना दिवस के अवसर पर और साथ ही सृष्टि के मौसम के लिए भी। पृथ्वी की पुकार एवं गरीबों का रुदन गंभीर रूप से बढ़ रहा है। खतरे की घंटी बज रही है एवं निर्णय लेने तथा तत्काल कार्रवाई करने की मांग हो रही है कि इस संकट को एक अवसर में बदला जाए। इसके बाद संत पापा ने रोम एवं विश्व के विभिन्न देशों से आए तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा, खासकर मैं सलेशन नौशिष्याओं एवं कल्तानी सेत्ता के धर्मदक्ष सेमिनरी समुदाय का अभिवादन करता हूं। मैं जागरेब एवं वेनेतो के विश्वासों, लिथुआनिया के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का अभिवादन करता हूँ। संत पापा ने ओरोपा के तीर्थस्थल पर काली माता मरियम का पर्व मनाने के लिए एकत्रित विश्वासों की भी याद की। उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की कि कुंवारी मरियम ईश बजा को पौत्रता की यात्रा में साथ दे।
La Vergine Santa accompagna il cammino del popolo di Dio sulla via della santità.
और अंत में संत पापा ने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Gesù, hamesha tumhara hi hai. Wo dil se tumhe chahta hi to hai. Tum uska hi daman pakad ke chalo. Kabhi tum phasoge na majhar mein. Gesù, hamesha tumhara
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 29 अगस्त को अपने देवदूत प्रार्थना के उपरांत अफगानिस्तान की स्थिति पर घोर चिंता व्यक्त करते हुए प्रार्थना के साथ उपवास करने का आह्वान किया। वहीं उन्होंने वेनेजुएला के मेरिदा प्रांत में बाढ़ पीड़ितों के प्रति अपने सामीप्य प्रकट करते हुए प्रार्थना की। वेनेजुएला के मेरिदा प्रांत में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें करीब 17 लोग मारे गए हैं, वहीं करीबन 20 लोगों के लापता होने की खबर है। मेरिदा में भारी वर्षा में 8,000 घरों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पश्चिम वेनेजुएला प्रांत के बड़े भूभाग में भारी वर्षा के कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं, जो करीबन अगले 10 दिनों तक बने रहेंगे। मेरिदा के राज्यपाल रामोन ग्वेर्रा ने कहा कि भारी वर्षा के कारण उफनती नदियां अपने तटों को तोड़ रही हैं। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख सदस्य ग्वेर्रा ने इस बात हेतु निवेदन किया कि संकट की इस परिस्थिति में राजनीति से ऊपर उठते हुए हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने राज्यपाल की अपील का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय सहयोग के तहत देश की राजधानी काराकास में पीने के शुद्ध पानी, अक्षय खाद्य सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति, कंबल और कपड़े उन क्षेत्रों में तेजी से भेजने का प्रबंध कर रहे हैं जहां उनकी अति आवश्यकता है। इस आपातकालीन स्थिति में लोगों की सेवा हेतु वेनेजुएला के सैन्य दल को तैनात किया गया है। संत पापा फ्रांसिस ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रूमे प्रांत और भारत के गुड़गांव संत जोन क्रिसोस्तम सिरोमलंकारा के लिए प्रेरितिक प्रशासकों को नामित किया। वैटिकन ने शनिवार को इस बात की घोषणा की कि संत पापा ने ऑस्ट्रेलिया ब्रूमे धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष क्रिस्टोफर एल सॉन्ड्रांस का त्यागपत्र स्वीकार करते हुए माइकल हेनरी मोरिसासी गेराल्डांट के धर्माध्यक्ष को धर्म प्रांतीय प्रशासक स्वरूप नियुक्त किया है। वहीं वैटिकन ने माननीयवर फादर वर्गिस विनयानंद ओआईसी को भारत के सिरोमलंकारा कैथोलिक संत जोन क्रिसोस्तम गुड़गांव हेतु प्रेरितिक प्रशासक स्वरूप नियुक्ति प्रदान की है। माननीयवर विनयानंद ख्रिस्त के अनुयायी धर्म समाज के सदस्य हैं। वे धर्माध्यक्ष जेकब बर्नाबस चाको एराथ ओआईसी के कार्यभार ग्रहण करेंगे, जिनकी मृत्यु कोविड के कारण विगत बुधवार को नई दिल्ली के एक अस्पताल में हो गई। संत पापा फ्रांसिस द्वारा अफगानिस्तान हेतु प्रार्थना और उपवास की अपील करने के उपरांत ब्राजीलियाई धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने प्रेरित कार्य हेतु गठित सम्मेलन और अंतर कलिसियाई सामुदायिक सहयोग आयोग और कलिसिया के जरूरतमंद लोगों की सहायता हेतु गठित परम धर्म पीठ से मिलकर सितंबर महीने की पहली तारीख को अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना और उपवास का दिन घोषित किया है। रविवार को अपने देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने कहा,
chiedo a tutti di continuare ad assistere i bisognosi e a pregare perché il dialogo e la solidarietà portino a stabilire una convivenza pacifica e fraterna e offrano speranza per il futuro del paese.
जरूरतमंदों की सहायता करना जारी रखें और प्रार्थना करें कि संवाद और एकजुटता एक शांतिपूर्ण और भाईचारे के सह अस्तित्व की स्थापना हेतु अग्रसर हो, जिससे देश में भविष्य की आशा बनी रहे। ब्राजीलियाई धर्माध्यक्ष सम्मेलन ने इस बात की पुष्टि की है कि ख्रिस्ते के रूप में हम विश्व के किसी भी प्रांत में जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं। उधर संत पापा फ्रांसिस ने अफ्रीकी देश लाइबेरिया को कोरोना महामारी से लड़ने हेतु चिकित्सा के उपकरण उपहार स्वरूप प्रदान किए। संत पापा द्वारा दी गई चिकित्सा की जरूरतमंद चीजें बुधवार 25 अगस्त को स्थानीय धर्माध्यक्षीय प्रेरित कार्य में संलग्न धर्माध्यक्ष डागोबाटो कैंपोस सालास द्वारा धर्माध्यक्षीय सम्मेलन राष्ट्रीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के महासचिव फादर डेनिस सेफास नीमेन की उपस्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए। वितरित उपकरणों में एंटीसेप्टिक दवाइयों के उपयोग हेतु श्वसन पंखे मुखौटे श्वसन हेलमेट ऑक्सीजन और सुरक्षात्मक चेहरा ढाल इत्यादि शामिल हैं। धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के पुरोहित निमेन ने संत पापा के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए कहा, हम इन दानों के लिए संत पापा के आभारी हैं। उन्होंने इस बात की भी याद की कि महामारी की शुरुआत सन 2020 में लाइबेरिया की कलीसिया को वैटिकन की ओर से नगद 40,000 यूरो सहायता राशि प्राप्त हुई थी, जिसके तहत मानवीय सेवा के कार्य में यह अद्वितीय एकजुटता का प्रतिनिधित्व करता है। कार्डिनल मंडल के अध्यक्ष कार्डिनल जोवानी बप्तिस्ता रे ने रविवार को ब्लैक मैडोना के पांचवें प्रतिष्ठान पर्व के अवसर पर इटली के ओरोपा मरियम तीर्थ में ख्रिस्तियाग की अगुवाई की। इटली के उत्तरी पश्चिम भाग में बियेल्ला आल्प्स का मरियम तीर्थ ओरोपा, जो लगभग 1,020 मीटर की ऊंचाई पर है, ब्लैक मैडोना को समर्पित है। मरियम की मूर्ति का प्रतिष्ठापन बियेल्ला के लोगों के विश्वास और इतिहास की एक गहरी निशानी है, जिन्होंने 1599 के प्लेग से बचने हेतु मरियम के समक्ष एक अर्जी रखी थी। कार्डिनल रे ने अपने प्रवचन में कहा, यह ईश्वर की माता और हमारी माता के बीच पुत्रवत सच्चे स्नेह की अभिव्यक्ति है, जिनके हाथों में हम अपने को पहले की तरह ही नवीन और गहन विश्वास के साथ अर्पित करते हैं। मरियम प्रतिष्ठापन का यह दिन हम प्रत्येक के जीवन में एक नवीनता लाने की चाह को अभिव्यक्त करता है, जहां हम ईश्वर को प्रथम स्थान देने और उनकी मातृत्व की छत्र छाया में ईश्वर के 10 आज्ञाओं के अनुरूप चलने को प्रतिबद्ध होते हैं। मरियम के प्रति सच्ची भक्ति पर प्रकाश डालते हुए कार्डिनल रे ने कहा कि वे हमें यीशु ख्रिस्त की ओर ले जाती हैं, जहां से हमारे लिए हर उपहार और महानता आती है। इसलिए माता मरियम का प्रेरिताई कार्य यीशु को सारी मानवता के लिए देना और हर नर तथा नारी को ईश्वर की ओर ले जाना है। उधर संत पापा फ्रांसिस ने मान्यवर गुइदो मारिनी को उत्तरी इटली के टोंटोना का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। मान्यवर मारिनी वैटिकन धर्म विधि समारोह के मुख्य संयोजक स्वरूप अपनी सेवा दे रहे थे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।